तीसरा चैप्टर, बीसवीं शताब्दी - इतिहास लेखन की पाश्चात्य अवधारणाएं। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में एक शैक्षणिक अनुशासन एवं लोकप्रिय साहित्य के रूप में इतिहास का प्रभुत्व उतना नहीं रह गया था जितना कि पिछली शताब्दी में था। इस शताब्दी में न तो उच्च कोटि के ग्रंथ लिखे गए और न पिछली सदी में इतिहास की लोकप्रियता की परंपरा अविच्छिन्न रह सकी। डिल्थे का स्वप्न साकार न हो सका क्योंकि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों ने मनुष्य के अध्ययन के प्रति अपना पृथक योगदान दिया तथा इतिहास का इन नए विषयों से संबंध अनिश्चित रहा। स्वयं इतिहास के भीतर रांके द्वारा जोड़ी गई विभिन्न लड़ियां विश्रृंखलित हो गई। विषय की विभिन्न शाखाओं में योगदान दिए गए परंतु किसी को भी समान स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। इतिहासज्ञों का सबसे बड़ा वर्ग अभी तक रांके को अपना गुरु मानता रहा तथा इतिहास को एक वैज्ञानिक अनुशासन के नाम से संबोधित करता रहा। अधिकांश शोध प्रबंध अब भी अतीत के गौण अध्यायों पर केंद्रित होते हैं तथा इसके औचित्य के लिए रांके के इस सिद्धांत की दुहाई दी जाती है कि इतिहास के सब क्षण समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इस वर्ग के इतिहासकार अपने कार्य के संबंध में सभी सैद्धांतिक अथवा परिकल्पनात्मक प्रश्नों से बचते हैं। प्रस्तुत अध्याय में इस युग के महान इतिहासकार क्रोनचे, कालिंगवुड और विशेषतः स्पेंगलर तथा टाइनवी के लेखन के विवरण और व्याख्या के साथ साथ उन कारणों पर प्रकाश डाला गया है जिससे इस सती में पिछले सती की अपेक्षा इतिहास लेखन की रुचि में बाधा उत्पन्न हुई। विश्वविद्यालय में लोग इस धारणा से सहमत हैं कि इतिहास को विभिन्न अनुशासनों में से एक समझा जाए। क्योंकि इतिहासकारों की यह शाखा कठिन प्रश्नों से बचती है तथा एक साधारण शोध प्रणाली का प्रयोग करती है जिसको कोई भी थोड़े से परिश्रम से सीख सकता है, अधिकांश द्वितीय श्रेणी के इतिहासकार इस वर्ग में सम्मिलित होते हैं। उनकी प्रवृत्ति कम से कम के बारे में अधिक से अधिक जानने की होती है। यूनानी इतिहास लेखन के समय से ही इतिहासकार कल्पित मान्यताओं को तोड़ने, उच्च आदर्शों के पृष्ठभूमि में साधारण सांसारिक कारणों को खोजने, महान मनुष्यों में दोष देखने तथा अच्छी प्रकार बनाई गई योजनाओं की असफलता को बताने में विशेष आनंद का अनुभव करते रहे हैं। यह सब अतीत को उसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत करने के नाम पर किया जाता है। बीसवीं सदी में भी यह प्रक्रिया चलती रहती है। नमियर विशिष्ट का महत्व, नमियर डस्ट विशिष्ट का महत्व। इस प्रकार के इतिहास का सरलता से उपहास किया जा सकता है किंतु हम इसे पूर्ण रूप से महत्वहीन भी नहीं समझ सकते। प्रथम श्रेणी के कुछ इतिहासकार भी इस वर्ग के सदस्य हैं तथा वे यह दावा करते हैं कि उन्होंने अतीत को प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। इस विचारधारा का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि लुई नेमियर हैं। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन की राजनीति के अध्ययन के आधार पर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उस समय सभी महत्वपूर्ण विषयों पर संसद द्वारा निर्णय लिए जाने का आधार कोई सिद्धांत अथवा मान्यता न होकर संसद सदस्यों की आर्थिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि तथा उनके अन्य सदस्य संसद सदस्यों के साथ संबंध थे। नेमियर के सुझाव पर सभी संसद सदस्यों के बारे में विस्तृत जीवन आंकड़े एकत्रित करने के लिए एक विशाल ऐतिहासिक अनुसंधान परियोजना स्थापित की गई है। इस प्रस्तावित परियोजना के कारण नेमियर पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने इतिहास को विवेकहीन कर दिया है। नेमियर का प्रत्युत्तर यह है कि मनुष्यों तथा सामाजिक व्यवस्थाओं का अपना एक इतिहास होता है जिसके अनुसार उनका विकास होता है और फिर पर्यावरण की जानकारी द्वारा मनुष्य का अध्ययन संभव है। इस वर्ग के इतिहासकारों के अनुसार अतीत के इतिहास में कोई क्रमबद्धता नहीं है। इस क्रमबद्धता के अभाव में किसी क्षेत्र अथवा काल विशेष का इतिहास लिखने के लिए विविध विवरणों को जुटाना वास्तव में कठिन है। इस कठिनाई का नेमियर द्वारा प्रस्तावित समाधान यह है कि अनुसंधान परियोजना का गठन किया जाए जिसके अधीन कई विद्वान सामूहिक रूप से कार्य कर सकते हैं, परंतु आधुनिक विषयों के अध्ययन से संबंधित सामग्री के बाहुल्य को देखते हुए इनके अध्ययन के लिए यह पद्धति भी अपर्याप्त है। पठनीय परिणामों को लिखना स्वयं में एक बड़ी समस्या है। मानव के अध्ययन में संलग्न एक इतिहासकार के सम्मुख एक बड़ी चुनौती है। यदि यह मान भी लिया जाए कि अतीत के इतिहास में कोई क्रमबद्धता नहीं है तथा किसी प्रकार का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है, फिर भी संकीर्ण अध्ययन किस प्रकार मानव के विषय में जानकारी प्राप्त करा सकता है, एलन बुलक ने अपने एक लेख में एक सुंदर सुझाव रखा है। उसके इस सुझाव के अनुसार एक ऐसे इतिहासकार का जो जीवन पर्यंत अतीत के किसी काल विशेष का अध्ययन करता है, मनुष्य के विषय में ज्ञान उस इतिहासकार के ज्ञान से किसी प्रकार कम नहीं होगा जो कि विश्व इतिहास लिखता है। किसी घटना विशेष के गहन अध्ययन से मानव की दशा के संबंध में वही अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है जो अन्य घटनाओं के अध्ययन से प्राप्त है। विशिष्ट के इस महत्व को इतिहास का प्रमुख कार्य समझना, मूल्यों अथवा मान्यताओं की उपेक्षा करना तथा किसी प्रणाली विशेष को श्रेष्ठता के स्तर तक विकसित कर उससे संतुष्ट हो जाना इतिहासवाद का एक सतत उल्लंघन है। ऐतिहासिक ज्ञान के स्वरूप को परिभाषित करने तथा मानव विज्ञान के लिए एक सुदृढ़ आधार स्थापित करने की संभावना की गवेषणा करने का प्रयास डिल्थे के पाश्चात दो दार्शनिक इतिहासज्ञों ने किया है। वे हैं इटली के बेनेडिटो क्रोचे तथा इंग्लैंड के आरजी कॉलिंगवुड। दोनों के अनुसार ऐतिहासिक ज्ञान मानव संबंधी ज्ञान का स्रोत है, किंतु वे इसके प्रति बहुत आशावान नहीं है क्योंकि इसके लिए यथार्थवादी ज्ञान आवश्यक है। क्रोचे के अनुसार ऐतिहासिक ज्ञान मानव में ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ रूप है तथा यह दर्शन में विलीन हो जाता है। बिको तथा डिल्थे का अनुसरण करते हुए यह कहता है कि मनुष्य प्रकृति के परिमंडल की अपेक्षा स्वयं अपने परिमंडल को अधिक गहराई से समझ सकता है। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक ज्ञान के सापेक्षतावाद तथा इससे वैज्ञानिक ज्ञान के यथार्थवादी स्वरूप के पार्थक्य पर बल देकर वह ऐतिहासिक ज्ञान की विशेषताओं पर प्रकाश डालता है। उसके अनुसार यह एक दुर्बलता न होकर एक शक्ति है। एक प्रसिद्ध वाक्यांश में वह कहता है, संपूर्ण इतिहास वर्तमान इतिहास है। इससे तात्पर्य यह है कि प्रत्येक वर्तमान अतीत को अपनी दृष्टि से देखता है तथा अतीत को उस रूप में नहीं देखता जिसमें वह था। अतीत का निर्माण इतिहासकार के मस्तिष्क में होता है। क्रोचे तथा विज्ञानवादी इतिहासज्ञों के मध्य संपर्क स्थापित करने की संभावना बहुत कम है। जिस वस्तु को डिल्थे ने बनाए रखने का प्रयत्न किया था उसे क्रोचे ने बड़ी सरलता से त्याग दिया। उसके द्वारा प्रतिपादित इतिवृत्ति तथा इतिहास के मध्य भेद कम से कम इतिहासज्ञ की कई समस्याओं में से एक का स्पष्टीकरण कर देता है। इतिवृत्त रूपी ढांचे पर निर्वचन का मांस लगाकर इतिहासकार को इसे इतिहास का रूप प्रदान करना चाहिए। कॉलिंगवुड डैश इतिहास मानव के संपूर्ण ज्ञान का स्रोत। इस प्रकार कॉलिंगवुड की भी मान्यता है कि इतिहास एक अद्वितीय प्रकार का ज्ञान है तथा यह मानव के संपूर्ण ज्ञान का स्रोत है। यह 20वीं शताब्दी के ब्रितानी दर्शन में एकाकी व्यक्तित्व है तथा उसकी इतिहास प्रकृति भी उसकी पार्थक्य की भावना से दुष्प्रभावित है। द आइडिया ऑफ हिस्ट्री नामक उसका महान ग्रंथ 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिक लक्ष्यों की आलोचना से परिपूर्ण है। उसके अनुसार ऐतिहासिक अध्ययन में जो भी दोष है वे सब प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियों के अनुकरण के कारण है। इस कृति के ऐतिहासिक खंड में यह विज्ञानवाद जिसे वह प्रत्यक्षवाद कहता है मतिभ्रंश के रूप में दिखाई पड़ता है। यह उसकी कृति को ऐतिहासिक बनाता है क्योंकि वह पिछली शताब्दी की विचारधारा को समझने में असमर्थ है तथा वह स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर अतीत का मूल्यांकन करता है। कॉलिंगवुड का अधिक महत्वपूर्ण योगदान उसके ग्रंथ के उपसंहार में है जहां वह ऐतिहासिक ज्ञान की अपनी परिभाषा की व्याख्या करता है। न डिल्थे ने और न ही क्रोचे ने इसके समान कोई सुव्यवस्थित कृति लिखी है, किंतु यह भी मरणोपरांत प्रकाशित हुई है। अध्याय 10 में उद्धृत भाग बहुत सुंदर ढंग से यह चित्रित करता है कि कॉलिंगवुड का एक अद्वितीय एवं स्वतंत्र अनुशासन के रूप में इतिहास से क्या तात्पर्य है। कॉलिंगवुड संभवतः अपने सर्वाधिक प्रसिद्ध वाक्यांश में कहता है, संपूर्ण इतिहास विचारधाराओं का इतिहास है, और इस प्रकार वह मानव के अध्ययन की विलक्षणता पर बल देता है। मनुष्य के कार्य विचार पूर्ण होते हैं मार्क्स तथा फ्रायड के होते हुए भी, तथा इतिहासकार ऐतिहासिक अभिनेताओं के विचार की पुनरावृत्ति कर अतीत का पुनर्निर्माण करता है। क्रूचे की भांति कॉलिंगवुड भी डिल्थे की यथार्थवादी विचारधारा का महत्व कम करता है। क्रूचे तथा कॉलिंगवुड दोनों के इतिहास में वैज्ञानिक विचारधारा के प्रयोग की अवांछनीयता के प्रति इतने अधिक सचेत हैं कि वे 19वीं शताब्दी के अंत में मानवीय अध्ययन के प्रति किए गए योगदानों को स्वीकार नहीं कर पाते। इतिहासवाद की दो शाखाओं की इन प्रशाखाओं ने इतिहास के सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक रूपों के प्रति कोई विशेष योगदान नहीं दिया है। 19वीं शताब्दी की एक अन्य विशेषता सुनियोजित विश्व इतिहास लिखने के प्रयत्न थे। 20वीं शताब्दी के दो लोकप्रिय तथा प्रभावशाली ग्रंथों में भी इस प्रवृत्ति को अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है, परंतु इन ग्रंथों ने सामान्य इतिहासकार को प्रभावित नहीं किया है। ये ग्रंथ है ओसवाल्ड स्पेंगलर का डिक्लाइन ऑफ द बेस्ट तथा आर्नल्ड टैनवी की स्टडी ऑफ हिस्ट्री। यद्यपि ये दोनों ग्रंथ पूर्णता तथा असाधारण अंतर्दृष्टि का दावा करते हैं, फिर भी इनमें स्पष्ट रूप से त्रुटियां एवं अनुसंधान पद्धति संबंधी दोष विद्यमान हैं, किंतु इतना अवश्य है कि कम से कम उन समस्याओं को प्रतिबिंबित करते हैं जिनको इतिहासज्ञ अभी तक हल नहीं कर पाया है। स्पेंगलर डैश संस्कृतियों का इतिहास। स्पेंगलर की इस महान ग्रंथ की योजना तथा इसका प्रथम प्रारूप 1914 में ही बना लिए थे, और परंतु 1917 से पूर्व यह प्रकाशित नहीं हो सका। इसकी लोकप्रियता का प्रमुख कारण पाश्चात्य जगत का प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप मोहभंग होना था। तथापि स्पेंगलर आदि अनुभूतिपूर्ण व्यक्तियों को इस पतन का आभास साधारण लोगों के पहले ही हो गया था। वास्तव में यह ग्रंथ इतिहास का एक परिकल्पनात्मक दर्शन है, जो कि इतिहासवाद की कई अंतर्दृष्टियों का प्रयोग करने के अतिरिक्त कुछ नए तत्वों को भी प्रस्तुत करता है। स्पेंगलर के अनुसार इतिहास से तत्पर्य मानव संसार के स्वभाव से है, न कि प्राकृतिक संसार से। वह संपूर्ण मानव इतिहास को 8 प्रमुख सांस्कृतिक सभ्यताओं में विभाजित करता है। मिस्री, चीनी, प्राचीन सामी, भारतीय, ईरानी, यूनानी, रोमन तथा पाश्चात्य। इनमें से प्रत्येक का एक मूलभूत प्रतीक है, जिसके माध्यम से उस संस्कृति विशेष के आंतरिक संबंधन को जाना जा सकता है। कोई भी संस्कृति अन्य संस्कृतियों से सर्वथा भिन्न है तथा उसके स्वयं निर्मित मूल्य हैं, जिन पर किसी अन्य संस्कृति का कोई प्रभाव नहीं है। इनमें से प्रत्येक संस्कृति विकासशील है, परंतु स्पेंगलर को परंतु स्पेंगलर को ऐतिहासिक प्रक्रिया में रेखीय विकास का सिद्धांत मान्य नहीं है। प्रत्येक समाज के विकास की कुछ निश्चित अवस्थाएं होती है, जिनकी तुलना हम एक जीवन क्रम की विभिन्न अवस्थाओं से कर सकते हैं। प्रत्येक समाज अपने अवसंभावी अंत से पूर्व सृजनात्मक संस्कृति तथा असृजनात्मक सभ्यता के युगों से गुजरता है। इसका जीवन काल लगभग 1000 वर्षों का होता है। स्पेंगलर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पाश्चात्य सभ्यता का अंत निकट है। वह अपने पाठकों से अनुरोध करता है कि वे इस तथ्य को धैर्यपूर्वक स्वीकार करें। एक अपरिहार्य नियति के रूप में इसको स्वीकार करना ही होगा। इस प्रकार स्पेंगलर एक निर्भीकतापूर्वक रेखीय विकास के रूप में विश्व इतिहास लेखन का प्रयत्न त्याग देता है। यद्यपि पाश्चात्य विद्वान प्रत्येक युग एवं समाज के अपने पृथक महत्व की बात करते थे, फिर भी वे पाश्चात्य सभ्यता को श्रेष्ठतर समझते थे। जिन विद्वानों का हमने यहाँ उल्लेख किया है, उनमें केवल वाल्टेयर ने ही प्राच्य जगत को परंतु स्पेंगलर को ऐतिहासिक प्रक्रिया में रेखीय विकास का सिद्धांत मान्य नहीं है। प्रत्येक समाज के विकास की कुछ निश्चित अवस्थाएं होती है, जिनकी तुलना हम एक जीवन क्रम की विभिन्न अवस्थाओं से कर सकते हैं। प्रत्येक समाज अपने अवसंभावी अंत से पूर्व सृजनात्मक संस्कृति तथा असृजनात्मक सभ्यता के युगों से गुजरता है। इसका जीवन काल लगभग 1000 वर्षों का होता है। स्पेंगलर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पाश्चात्य सभ्यता का अंत निकट है। वह अपने पाठकों से अनुरोध करता है कि वे इस तथ्य को धैर्यपूर्वक स्वीकार करें, एक अपरिहार्य नियति के रूप में इसको स्वीकार करना ही होगा। इस प्रकार स्पेंगलर निर्भीकता पूर्वक रेखीय विकास के रूप में विश्व इतिहास लेखन का प्रयत्न त्याग देता है। यद्यपि पाश्चात्य विद्वान प्रत्येक युग एवं समाज के अपने पृथक महत्व की बात करते थे, फिर भी वे पाश्चात्य सभ्यता को श्रेष्ठतर समझते थे। जिन विद्वानों का हमने यहाँ उल्लेख किया है, उनमें केवल बाल्टेयर ने ही प्राच्य जगत को गंभीरता से लिया है। स्पेंगलर प्रत्येक सभ्यता को समान महत्व देता है। यद्यपि स्पेंगलर विभिन्न संस्कृतियों के तुलनात्मक अध्ययन की संभावना को स्वीकार नहीं करता है, फिर भी समाजशास्त्रियों ने इतिहासज्ञों की तुलना में उसे अधिक महत्व दिया है। 8 विभिन्न सत्ताओं का निरूपण कर जो कि विकास की समान अवस्थाओं से गुजरती है, हम इस सिद्धांत के प्रयोग से अतीत को विभिन्न तुलनीय इकाइयों में विभक्त कर सकते हैं, जिनके संबंध में सामान्यीकरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। स्वयं स्पेंगलर ने अपने सिद्धांत के आधार पर पाश्चात्य सभ्यता के निकट अंत की भविष्यवाणी की थी, जो एक ऐसी सत्ता थी जिसने इतिहास को महत्व प्रदान किया था। इस सिद्धांत के प्रयोग से स्पेंगलर ने इतिहास एवं समाजशास्त्र के पारस्परिक विलय के विरोध मुख्य बाधा को दूर किया। स्पेंगलर समाजों के प्रारंभ एवं अंत दोनों की कल्पना करता है। स्पेंगलर के विश्लेषण का वास्तविक निहितार्थ यह है कि अतीत का सुनियोजित एवं अनुशासित अध्ययन असंभव है। उसकी यह मान्यता कि प्रत्येक सभ्यता पूर्ण रूपेण विलक्षण एवं स्वाधीन है किसी प्रकार के तुलनात्मक विश्लेषण की संभावना नहीं छोड़ती, यहाँ तक कि प्रत्येक सभ्यता में मानव स्वभाव भी भिन्न है। एक बाहरी व्यक्ति तर्क अथवा अनुशासित अध्ययन के माध्यम से किसी सभ्यता को नहीं समझ सकता, केवल अंतर्दृष्टि के माध्यम से ही यह संभव है। इस कारण यह आपत्ति उठती है कि स्पेंगलर किसी प्रकार विभिन्न सभ्यताओं की विशेषताओं का निरूपण करने का भी प्रयास कर सकता है तथा उसकी कृति लगभग बुद्धिवाद विरोधी रूप धारण कर लेती है, किंतु उसका यह एक बड़ा योगदान है कि वह इस तथ्य को निहित अर्थ का गहन अध्ययन करता है कि कोई भी समाज विशेष विभिन्न अंतर संबंध अवयवों से निर्मित हुआ है। स्पेंगलर के अनुसार प्रत्येक संस्कृति एक ऐसी इकाई है जहां प्रत्येक अभिव्यक्ति एक दूसरे से संबंधित हैं तथा जहां सब लोग उस संस्कृति विशेष की आत्मा को भी व्यक्त करते हैं। स्पेंगलर ने इतिहासज्ञ के एक बड़े दायित्व के प्रति महान योगदान दिया है, जिसका विकास मानव शास्त्रियों द्वारा विशेष रूप से आदिम संस्कृतियों के अध्ययन के अंतर्गत किया गया, हालांकि उसकी पद्धति संपूर्णता में उनको प्रभावित नहीं करती। टायनबी की इतिहास दृष्टि। आर्नल्ड टायनबी का 10 भागों में विभक्त ग्रंथ स्टडी ऑफ हिस्ट्री कई प्रकार से स्पेंगलर की कृति का रूपांतर मात्र ही है। दोनों विद्वान लगभग समकालीन हैं तथा टायनबी स्पेंगलर से केवल 9 वर्ष छोटा है, किंतु जबकि स्पेंगलर ने एक युवक के रूप में इतिहास लेखन किया, टायनबी ने अपने ग्रंथ की समाप्ति के समय एक प्रौढ़ व्यक्ति था। दोनों विश्व इतिहास को अध्ययन के हेतु सभ्यता रूपी इकाइयों में विभक्त करते हैं। टायनबी ने इन इकाइयों की संख्या 23 निर्धारित की है, जबकि स्पेंगलर के अनुसार यह संख्या 8 है। ये सभ्यताएँ विभिन्न निश्चित अवस्थाओं से गुजरती है, यद्यपि टायनबी इस संदर्भ में अधिक भिन्नता पाता है। दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पाश्चात्य सभ्यता अवनति के अंतिम चरणों में पहुंच गई। इस प्रकार दोनों ग्रंथों की मूलभूत रूपरेखा समान है, किंतु टायनबी यह कहने के स्थान पर कि सभ्यताओं को अनुशासित अध्ययन के माध्यम से नहीं समझा जा सकता, स्पष्ट रूप से कहता है कि उसका अध्ययन अनुभव आश्रित है तथा कम से कम अपने ग्रंथ के प्रारंभिक भागों में वह निर्भीक रूप से मनोविज्ञान सहित विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का उपयोग कर अपनी बात कहता है। इसके अतिरिक्त वह यह भी देखता है कि किस प्रकार विभिन्न सभ्यताएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, और इस प्रकार वह स्पेंगलर की इस मान्यता को स्वीकार करता है कि प्रत्येक सभ्यता का पार्थक्य में विकास एवं अंत होता है। टायनबी का यह दावा करता है कि वह इतिहास को समझने के लिए सामाजिक विज्ञानों की अनुसंधान पद्धति का प्रयोग कर रहा है। इसके साथ ही वह देखता है कि प्रायः विकास का क्रम प्राचीन से आधुनिक की ओर अग्रसर होता है तथा उसके ग्रंथ के परिवर्तित भागों में धर्म बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे जैसे सभ्यताओं का पतन होता है, नए धर्मों का उदय होता है तथा विश्व इतिहास की प्रत्येक अनुक्रमिक अवस्था में धर्म का स्तर उच्चतर होता जाता है। धीरे धीरे टाई नबी पाश्चात्य सभ्यता के संबंध में अपना निराशावाद त्याग देता है तथा एक पैगंबर का रूप धारण कर कहता है कि यदि पाश्चात्य जगत अपनी समयोचित भूमिका तथा उचित मूल्यों को स्वीकार कर लेता है तो वह अपनी पतनोन्मुख सभ्यता के भीतर एक नए धर्म का निर्माण कर विश्व इतिहास के प्रति अपना योगदान दे सकता है। टाइनबी ने हाल में ही अपने ग्रंथ का नया संक्षेप प्रकाशित किया है जो दो भागों में विभक्त है। यह विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत लोकप्रिय हुआ। भारतवासियों ने भी टाइनबी को आदर की दृष्टि से देखा है क्योंकि उसने भारतीय धर्म की आधारभूत सहनशीलता की प्रशंसा की है, किंतु इतिहासज्ञों ने उसकी कटु आलोचना की है। प्रथम तो उसने विश्व इतिहास को एक पद्धति विशेष तक ही सीमित रखने का प्रयास किया है तथा पुनः उसने एक धर्म उपनिदेशक का रूप धारण किया है। आलोचकों के अनुसार दोनों ही कार्य एक इतिहासकार को शोभा नहीं देते। यदि हम उसके आलोचकों के साथ सहमत भी हो जाएं, तो भी यह मानना पड़ेगा कि टाइनबी उन अल्पसंख्यक व्यक्तियों में से एक है जिन्होंने मानव संबंधों जैसे विस्तृत विषय पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया है। उसके निरीक्षण क्षेत्र के अंतर्गत सभी युग, सभी लोग तथा ज्ञान की सभी शाखाएं आ जाती है। यह अंततः इतिहास का ही कार्य है, किंतु यह विवरणात्मक विधि को छोड़कर प्रत्येक सभ्यता की विभिन्न विकास अवस्थाओं का अन्य सभ्यताओं के साथ अध्ययन करता है, जिससे कि उनका तुलना विशेष विश्लेषण तथा सामान्यीकरण प्रस्तुत किए जा सके। टाइनबी सामाजिक विज्ञानों की पद्धतियों तथा सामग्री का आंशिक उपयोग करने पर भी उस दिशा को दिखाने में सफल हुआ है जिसमें चलकर 20वीं शताब्दी के इतिहास लेखन ने नया मोड़ लिया है। सामाजिक विज्ञानों ने इसे आत्मसात नहीं किया है और न ही स्वयं में इसका एकीकरण हो सका है, परंतु इसने सामाजिक विज्ञानों विशेषकर समाजशास्त्र की अंतर्दृष्टि अवश्य अपनाई है। समाज वैज्ञानिक इतिहास की तीन प्रमुख विशेषताएं इसके सांस्थानिक, तुलनात्मक तथा सांख्यिकीय रूप है। सामाजिक विभिन्न संस्थाओं का समूह है तथा व्यक्ति इन संस्थाओं में विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह करता है। ब्रिटानी संसद, मध्यम वर्ग, यूरोपीय क्रांति तथा समानतावाद आदि के संबंध में ऐतिहासिक अध्ययन किए गए हैं। प्रारंभ में इस प्रकार का अध्ययन एक रूपीय समाजों तक सीमित था, परंतु शीघ्र ही यह प्रश्न उठा कि क्या वास्तव में विभिन्न समाजों की संस्थाओं के मध्य दिखाई देने वाली समरूपता इतनी अधिक है कि उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। स्पेंगलर द्वारा मानव के अतीत को 8 संस्कृतियों में विभक्त करने के फलस्वरूप तुलनात्मक अध्ययन की संभावना उत्पन्न हुई तथा टाइनबी ने एक प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन किया है। सामाजिक विज्ञानों ने प्रायः तथा समाजशास्त्र ने विशेष रूप से मानव समाज की इस प्रकार परिभाषा की है कि इससे तुलनात्मक अध्ययन को बल मिलता है। डिल्थे ने इस प्रकार के सामाजिक विश्लेषण का सुझाव दिया था। यद्यपि सांस्थानिक इतिहासज्ञ यह स्वीकार करते हैं कि किसी परिस्थिति विशेष के अध्ययन के लिए इस प्रकार के विश्लेषण का प्रयोग किया जा सकता है, फिर भी वे तुलनात्मक विश्लेषण करने से झिझकते हैं। यूरोपीय समाजवाद के अपने प्रसिद्ध अध्ययन के पश्चात मार्क ब्लॉक ने एक ही प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाओं के तुलनात्मक विश्लेषण की संभावना का सुझाव दिया, परंतु यह भी विचारणीय है कि वह पूर्ण सतर्कता के साथ ही उस सीमा को सुझाता है जहां तक कि सामान्यीकरण दिए जा सकते हैं। अपने अनुसंधान कार्य के लिए समाज वैज्ञानिकों ने विश्लेषण की नई पद्धतियों का विकास किया है। इसमें सर्वाधिक उपयोगी वे पद्धतियां हैं जिनके अंतर्गत समाज को अध्ययन की सुविधा के लिए विभिन्न इकाइयों में विभक्त किया गया है और फिर विभिन्न सांख्यिकी ये प्रविधियां विस्तृत विश्लेषण को भी संभव बनाती है। इतिहासज्ञ अपने कार्य में इन पद्धतियों का लाभ उठा सकता है तथा समाज वैज्ञानिकों के कुछ निष्कर्षों का अतीत के इतिहास लेखन के लिए सामग्री के रूप में प्रयोग कर सकता है। रिचर्ड हॉप्स डेटर ने इस मत का प्रतिपादन किया है। इतिहास लेखन के प्रसार में बाधा के कारण। इतिहास लेखन का परंपरागत स्वरूप विवरणात्मक है। इसी रूप में इतिहास 19वीं शताब्दी में इतना अधिक लोकप्रिय था किंतु 20वीं शताब्दी में कुछ पाठ्य पुस्तकों को छोड़कर विवरणात्मक विधि का कम ही प्रयोग किया गया है। अतीत के कुछ अंशों मात्र के अध्ययन अथवा तुलनात्मक अध्ययन या सामान्यीकरण की ओर उन्मुख विश्लेषण में विवरणात्मक पद्धति का प्रयोग सरलता से संभव नहीं है। यह सत्य है कि इस परिवर्तन का कारण इतिहास के संबंध में चली आ रही यह अनिश्चितता है कि क्या यह एक सामाजिक विज्ञान है, किंतु इसके अतिरिक्त अन्य कारण भी हैं। एक तो विश्व इतिहास के सभी मूलभूत विवरण गत शताब्दी में लिखे गए तथा एक बार मूलभूत विवरण के लिखे जाने के पश्चात उसमें केवल आंशिक सुधार ही संभव है। संभवतः कोई महान विद्वान विश्व इतिहास के प्रमुख अंशों को पुनः आकर्षक ढंग से लिख सके, किंतु फिर भी जो लिखा जा चुका है उसका मूलभूत नहीं बदलेगा। फिर महान इतिहास ग्रंथों की कथा वस्तु राजनैतिक घटनाक्रमों से संबंधित है। फ्रांस की क्रांति तथा फलस्वरूप नई राजनैतिक संस्थाओं के प्रादुर्भाव ने इस प्रवृत्ति का और भी विकास किया, किंतु सांस्कृतिक इतिहास लेखन के लिए विवरणात्मक विधि को त्यागना पड़ा। वाल्टेयर ने लुई 14वें का युग तथा जैकब बर्कहार्ट ने इटली में पुनर्जागरण की सभ्यता में यही किया है। इस प्रकार सामाजिक इतिहास लेखन जो साधारण मनुष्यों के जीवन पर ध्यान केंद्रित करता है, इतिहास को विभिन्न युगों के स्थान पर विभिन्न प्रसंगों में विभक्त करता है। विवरणात्मक पद्धति राजनैतिक शक्ति का उपयोग करने वाले मनुष्यों के कार्यों का वर्णन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, किंतु जब हम इतिहास को सांस्कृतिक विकास तथा मनुष्यों के विकास के वृत्तांत के रूप में देखते हैं, उस समय इस पद्धति की सीमाएं स्पष्ट हो जाती हैं। समाज के लोकतंत्रीकरण, जिसके अधीन निम्नतर स्तर का मनुष्य भी महत्वपूर्ण बन गया है, तथा आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक तत्वों के बोध के कारण नवीन लेखन शैलियों की आवश्यकता है, एक अन्य कारण निकट अतीत के अध्ययन के लिए निरंतर बढ़ते हुए परमाणुओं की प्राप्यता है। इस प्रकार विस्तृत विश्लेषण की संभावना बढ़ जाती है तथा एक सामान्य विवरण को लिखना उतना ही कठिन हो जाता है। एक अंतिम कारण यह भी है कि विवरणात्मक ढंग से एक व्यापक इतिहास जिसमें प्राच्य जगत को उचित स्थान प्राप्त हो लिखना कठिन है, किंतु इन कठिनाइयों के कारण इतिहासकार मानव का समय के आयाम में अध्ययन करने के अपने मूलभूत कर्तव्य से मुक्त नहीं हो जाता। सामाजिक विज्ञानों की चुनौती इतिहासकार का ध्यान इन प्राथमिकता कर्तव्य से हटाती है, फिर भी सामाजिक विज्ञानों के योगदान की उपेक्षा नहीं की जा सकती और न ही गत शताब्दी की इतिहास लेखन पद्धतियों की ओर लौटना उचित है। 20वीं शताब्दी में इतिहासकार का कार्य सामाजिक विज्ञानों के योगदान का उपयोग कर श्रेष्ठतर इतिहास लिखना है। हॉप्स डेटर ने अपने लेखन में बताया है कि यह कार्य किस प्रकार किया जा सकता है। हेनरी पीरेन ने अपने एक लेख में स्पष्ट किया है कि किस प्रकार अनिश्चितता के होने पर भी इतिहासकार अभी भी अपने विषय के विशेष कार्य की अभिपुष्टि करते हैं। वह समाज वैज्ञानिकों द्वारा परिष्कृत उन पद्धतियों का स्वागत करता है जिनका उपयोग इतिहासकार अपने विशेष प्रकार के ज्ञान के संदर्भ में कर सकता है। निष्कर्ष। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में विश्वविद्यालयों में इतिहास का स्वरूप परिवर्तित हुआ जब अतीत के विवरणों के स्थान पर इतिहासकार किसी एक काल की घटना का विस्तृत रूप में अध्ययन करने पर बल देने लगे, क्योंकि इस वर्ग के इतिहासकार यह मानते थे कि अतीत के इतिहास में कोई क्रमबद्धता नहीं है। फिर भी दावा करते थे कि अतीत को प्रस्तुत करने में उन्होंने प्रमुख भूमिका का निर्वाह किया है। उदाहरण के लिए लुई नेपियर 18वीं सती के ब्रिटेन की राजनीति का अध्ययन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संसद जो निर्णय लेती थी उसका कोई सिद्धांत नहीं था, बल्कि संसद सदस्यों की आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि तथा अन्य सदस्यों से संबंध जैसे तत्व किसी भी निर्णय में आधार का काम करते हैं। इसीलिए यदि संसद के निर्णयों का इतिहास जानना है तो सदस्यों से संबंधित विस्तृत आंकड़े एकत्र करने होंगे। कुछ लोगों के मत से नेपियर ने इस पद्धति से इतिहास को विवेकहीन बना दिया है। इसके उत्तर में एलन बुलक का विचार था कि इतिहासकार जो जीवन पर्यंत अतीत के किसी काल विशेष का अध्ययन करता है, मनुष्य के विषय में उसका ज्ञान उस इतिहासकार के ज्ञान से कम नहीं होगा जो विश्व इतिहास लिखता है। वास्तव में 20वीं सदी के पूर्वाध में किसी समाज के एक पक्ष के विशिष्ट अध्ययन को इतिहास का प्रमुख कार्य समझना, मूल्यों और मान्यताओं की उपेक्षा करना इतिहासवाद का सतत उल्लंघन था। ऐतिहासिक ज्ञान के स्वरूप को परिभाषित करने तथा मानव विज्ञान के लिए एक सुदृढ़ आधार स्थापित करने की संभावना का गवेषण करने का प्रयास डिल्थे के पाश्चात्य के दो दार्शनिक इतिहासज्ञों ने किया। वे हैं इटली के बेनेडेंटो क्रोंचे तथा इंग्लैंड के आरजी कॉलिंगवुड। क्रोंचे के अनुसार ऐतिहासिक ज्ञान मानव के ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ रूप है। वह बीको तथा डिल्थे के इस विचार से सहमत है कि मनुष्य प्रकृति की अपेक्षा स्वयं को अधिक गहराई से समझ सकता है। यह स्पष्टता से समझ लेना चाहिए कि ऐतिहासिक ज्ञान सापेक्ष होता है और वैज्ञानिक ज्ञान यथार्थवादी, और दोनों में भेद है। क्रोंचे ने इतिहास लेखन में वर्तमान को महत्व देते हुए स्थापना की कि संपूर्ण इतिहास वर्तमान इतिहास है, अर्थात वर्तमान अतीत को अतीत की दृष्टि से न देखकर अपनी दृष्टि से देखता है। अतीत का निर्माण इतिहासकार के मस्तिष्क में होता है, जिसे यथार्थवाद को डिल्थे ने बनाए रखने का प्रयत्न किया, उसे क्रोंचे ने बड़ी सरलता से त्याग दिया। दूसरे इतिहासकार कॉलिंगवुड के अनुसार इतिहास एक अद्वितीय प्रकार का ज्ञान है, यह मानव के संपूर्ण ज्ञान का स्रोत है। उसने अपने ग्रंथ आइडिया ऑफ हिस्ट्री में 19वीं सदी के वैज्ञानिक विचार की आलोचना की है। उसका विश्वास था कि वर्तमान ऐतिहासिक अध्ययन में जो दोष हैं वे सभी प्राकृतिक विज्ञानों के अनुसार के कारण के सभी प्राकृतिक विज्ञानों के अनुसरण के कारण है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वह पिछली सदी की विचारधारा को समझने में असमर्थ था। वह स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर अतीत का मूल्यांकन करता है। उसके अपने सिद्धांत क्या थे? अपने ग्रंथ के उपसंहार में ऐतिहासिक ज्ञान की परिभाषा की व्याख्या के संदर्भ में उनका उल्लेख करता है। उसकी मान्यता है कि इतिहास एक स्वतंत्र अनुशासन है। मूलतः संपूर्ण इतिहास विचारधाराओं का इतिहास है। मनुष्य के कार्य विचार पूर्ण होते हैं। अब वस्तुतः इतिहासकार ऐतिहासिक अभिनेता के विचारों की पुनरावृत्ति करके अतीत का पुनर्निर्माण करता है। क्रोंचे के अनुसार कॉलिंगवुड में हुए वैज्ञानिक विचारधारा के प्रयोग पर आधारित क्रोंचे के समान कॉलिंगवुड भी डिल्थे की यथार्थवादी विचारधारा को महत्व नहीं देता। वे पिछली सदी के अंत में हुए वैज्ञानिक विचारधारा के प्रयोग पर आधारित इतिहास के अध्ययनों को नकार देते हैं। यहाँ यह स्मरणीय है कि यद्यपि पिछली सदी के समान इस सदी में भी स्पेंगलर तथा टाइनवी जैसे इतिहासकारों के द्वारा विश्व इतिहास लिखे गए, परंतु इन ग्रंथों ने समान इतिहासकार को प्रभावित नहीं किया। स्पेंगलर तथा टाइनवी की विशेषता इस बात में है कि उन्होंने उन समस्याओं का उल्लेख किया है जिनको इतिहासकार अभी तक हल नहीं कर पाए हैं। स्पेंगलर का ग्रंथ दी डिक्लाइन ऑफ द बेस्ट वास्तव में इतिहास का एक परिकल्पनात्मक दर्शन है, जो इतिहासवाद की कई अंतर्दृष्टियों का प्रयोग करने के अतिरिक्त कुछ नए तत्वों को भी प्रस्तुत करता है। स्पेंगलर के अनुसार इतिहास से तात्पर्य मानव संसार के स्वभाव से है, न कि प्राकृतिक संसार से। वह संपूर्ण मानव इतिहास को 8 प्रमुख संस्कृति सभ्यताओं में विभाजित करता है: मिस्री, चीनी, प्राचीन सामी, भारतीय, ईरानी, यूनानी, रोमन तथा पाश्चात्य। इस वर्गीकरण से स्पष्ट है कि स्पेंगलर पाश्चात्य सभ्यता को विशेष महत्व नहीं देता। इनमें से प्रत्येक का एक मूलभूत प्रतीक है जिसके माध्यम से वह संस्कृति स्पष्ट होती है। प्रत्येक संस्कृति के अपने स्वयं निर्मित मूल्य हैं जिन पर अन्य किसी संस्कृति का प्रभाव नहीं है। यह आश्चर्य की बात है कि स्पेंगलर संस्कृतियों की तुलना की संभावना को स्वीकार नहीं करता है। उसकी दृढ़ मान्यता है कि प्रत्येक संस्कृति का जीवन काल 1000 वर्ष का होता है। इस विचार के अनुसार पाश्चात्य सभ्यता का अंत निकट है। स्पेंगलर समाजों के प्रारंभ और अंत दोनों की कल्पना करता है। उसका निहितार्थ है कि अतीत का सुनियोजित एवं अनुशासित अध्ययन असंभव है। तर्क या अनुशासित अध्ययन के माध्यम से किसी सभ्यता को समझना संभव नहीं है। उसके लिए अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है। कोई भी समाज विशेष विभिन्न अंतर संबंध अवयवों से निर्मित होता है, अर्थात प्रत्येक संस्कृति ऐसी इकाई है जहाँ प्रत्येक अभिव्यक्ति एक दूसरे से संबंधित हैं और उसके निर्माता उनके द्वारा उस संस्कृति की विशेष आत्मा को अभिव्यक्त करते हैं। स्पेंगलर के संस्कृति विचार ने इतिहास एवं समाजशास्त्र को निकट लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्पेंगलर से प्रेरणा पाकर समाजशास्त्रियों ने आदिम संस्कृतियों को अध्ययन किया। टाइनबी का स्टडी ऑफ हिस्ट्री एक प्रकार से स्पेंगलर की कृति का रूपांतर मात्र है। उसने 8 संस्कृतियों के स्थान पर संस्कृति की 23 इकाइयां निश्चित की हैं। वह स्पष्ट रूप से कहता है कि उसका अध्ययन अनुभव पर आश्रित है। उसके निर्भीक रूप से मनोविज्ञान तथा अन्य सामाजिक विज्ञान की अनुसंधान पद्धतियों की ओर अग्रसर होता है। जैसा सुविदित है कि उसके ग्रंथ के परिवर्तित भागों में धर्म बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके अनुसार जैसे जैसे सभ्यताओं का पतन होता है, नए धर्मों का उदय होता है। धीरे धीरे वह पाश्चात्य सभ्यता के विषय में अपना निराशावाद त्याग देता है और स्वयं जैसे एक पैगंबर का रूप धारण कर लेता है। यही कारण है कि इतिहासकारों ने जहां उसकी आलोचना विश्व इतिहास को एक पद्धति विशेष तक सीमित रखने में की है, वहीं धर्मोपदेश के कारण भी उसकी कटु आलोचना की है। फिर भी टाइनबी की इसीलिए प्रशंसा की जानी चाहिए कि उसने मानव संबंधों जैसे विस्तृत विषय पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। उसके निरीक्षण क्षेत्र के अंतर्गत सभी युग, सभी लोग तथा ज्ञान की शाखाएं आ जाती हैं। यह अंततः इतिहास का ही कार्य है। टाइनबी के इतिहास लेखन से 20वीं सदी के इतिहास लेखन में नया मोड़ लिया। उसने समाजशास्त्र की अन्वेषण विधि को अपनाया जिसके अंतर्गत उसके संस्थानिक, तुलनात्मक तथा सांख्यिकी रूप सम्मिलित है। अपने अनुसंधान कार्य के लिए समाज वैज्ञानिकों ने विश्लेषण की नई पद्धतियों का विकास किया है। इनमें सर्वाधिक उपयोगी वे पद्धतियां हैं जिनके अंतर्गत समाज को अध्ययन की सुविधा के लिए विभिन्न इकाइयों में व्यक्त किया गया है और फिर विभिन्न सांख्यिकीय प्रविधियां उसके विश्लेषण को संभव बनाती है। समाज विज्ञानों ने प्रायः मानव समाज की इस प्रकार से परिभाषा की है कि इससे तुलनात्मक अध्ययन को बल मिलता है। यहाँ तक स्मरणीय है कि इतिहास लेखन का परंपरागत स्वरूप विवरणात्मक था और अतीत के तुलनात्मक अध्ययन या सामान्यीकरण की ओर उन्मुख विश्लेषण में विवरणात्मक पद्धति का प्रयोग सरलता से संभव नहीं है। इतिहास लेखन में पुरानी परंपरा से हटने का एक कारण इतिहास के संबंध में चली आ रही यह अनिश्चितता भी थी कि क्या यह सामाजिक विज्ञान है। सांस्कृतिक इतिहास लेखन के लिए भी विवरणात्मक पद्धति को त्यागना पड़ा। बाल्टियर तथा बर्कहार्ट के लेखन से यही दृष्टि गोचर होता है। इस प्रकार सामाजिक इतिहास लेखन जो साधारण मनुष्यों के जीवन पर ध्यान केंद्रित करता है, इतिहास को विभिन्न युगों के स्थान पर विभिन्न प्रसंगों में विभक्त करता है। इतिहास को सांस्कृतिक विकास तथा मनुष्यों के विकास की कथा के रूप में देखने पर इस पद्धति की सीमाएँ स्पष्ट हो जाती है। इस प्रकार विस्तृत विश्लेषण की संभावना बढ़ जाती है तथा समान विवरण को लिखना और भी कठिन हो जाता है। इसीलिए इस युग में यह अवधारणा बलवती हुई कि अब इतिहासकार का कार्य सामाजिक विज्ञानों के योगदान का उपयोग करके पहले से श्रेष्ठतर इतिहास लिखना है। समाप्त।